மங்கள்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் ஜெயம் ஜெயம் ஜெயசி वर्णन से जीव को जीव की महिमा बताई है। जीव अपनी महिमा को न जानकर पर द्रव्यों में आकर्षित होता है, अपने में सुख है, अपने में सुख नाम की शक्ति है, ये जीव को आज तक पता नहीं है, इसलिए विषय भोगों में सुख खोजता है। अनंत शक्तियों में सुख नाम की शक्ति है और शक्ति शक्ति ऐसा प्रत्येक पर्याय में व्याप्त है। शक्ति शक्ति अपेक्षा प्रत्येक पर्याय में व्याप्त है। समझना नहीं बात नहीं है। शक्ति शक्ति अपेक्षा प्रत्येक पर्याय में व्याप्त है। क्या मतलब? इस शुभ नाम की शक्ति है। और ये सुना था और स्वामी जी प्रवचन में भी आज बात आई थी कि द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में है। बराबर, द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में है। तो शक्ति शक्ति अपेक्षा पर्याय में है तो हमको वो अनुभव में क्यों नहीं आ रही है? बराबर, अनाकुल नाम का अनाकुल शुभ शक्ति कौन सी शुभ शक्ति? अनाकुल इस समय सुनने की आकुलता भी आत्मा में नहीं है, उसकी ओर नहीं देख करके तो सुनने का विकल्प करता है और उस विकल्प के कारण से पर्याय में आकुलता है। ये तेरी कमी है, स्वरूप की कमी नहीं है, स्वभाव की कमी नहीं है। इस समय भी अनाकुलत नाम की शुभ शक्ति पर्याय में है, लेकिन शक्ति अपेक्षा शक्ति शक्ति अपेक्षा वर्तमान पर्याय में है। बराबर है। ये परम काम है। समझना की बात कि शक्ति शक्ति अपेक्षा से प्रत्येक समय की पर्याय में है। इसका मतलब क्या? जैसे चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं ज्ञान में है, जब जैसी चर्चाएं भी तब करेंगे, जैसे बहुबली तब ठीक नहीं शक्ति का बोल है जाग तो जीव उभो बरम है, जाग तो जीव उभो इतना ही है ना। किसी शक्ति जागृत जीव सदाकाल विद्यमान है। इसी प्रकार से जीव की प्रत्येक पर्याय में अनाकुलत्व नाम की सुख शक्ति सत्य अपेक्षा है, तो पर्याय में व्यक्त क्यों नहीं, प्रश्न आएगा। पर्याय में ये व्यक्त क्यों नहीं, सहज प्रश्न होगा किसी का भी, कि अनाकुलत्व नाम का सुख जो सांसारिक सुख है उसका निषेध करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख को बताने के लिए सुख शक्ति में अनाकुलत्व विशेषण दिया। कौन सा विशेषण दिया? अनाकुलत्व। अनाकुलता संसार का जो सुख है, समझ लीजिए कि मान कषाय में इसे जीव ने सुख मान रखा है, बराबर। अब यहाँ सबसे उच्च पद पर बिठा दिया, बात समझ में आ गई। सपरम बाधा संयम प्रवचन साधु को पांच दोष बताए, अपन को तो सामान्य भाव लेना है कि सांसारिक सुख निराकुल सुख नहीं होने से सांसारिक सुख में निराकुलत्व नाम का लक्षण नहीं होने से सांसारिक सुख में वास्तव में सुख नहीं, सुखा भाग है और कहीं गए तो दुख है। स्वामी जी कहते हैं, हेमचंद जी साहब आपकी दृष्टि से ही मुझे एक बात को कहना था, त्यागवाद सिद्ध्यर्थम। कौन से शब्द है? त्यागवाद सिद्ध्यर्थम। इस संस्कृत पढ़ने से थोड़ा सा विचार आया कि त्यागवाद की सिद्धि के लिए, पंडित सर त्यागवाद की सिद्धि के लिए या त्यागवाद के द्वारा सिद्धि प्रकट करने के लिए, हिंदी में अनुवाद किया है कि त्यागवाद की सिद्धि के लिए, और ये अनुवाद भी हो सकता था कि त्यागवाद के द्वारा सिद्धि के लिए। त्यागवाद की सिद्धि सुन लेना, सिर्फ ये शक्ति सर्वपुरुष समास है, और त्यागवाद के द्वारा सिद्धि ये त्रिपुरा सर्वपुरुष समास है। मतलब एक ऐसा शब्द है जिसके टुकड़े करने पर दो तरह से अर्थ हो सकता है, बराबर। ऐसी ही बात मुझे त्यागो पादान सिंहत्व शक्ति में बतानी, बराबर। थोड़ी शक्ति कौन सी? त्यागो पादान सिंहत्व शक्ति। अब त्यागो पादान सिंहत्व शक्ति का मोटा अर्थ हम ये समझते हैं कि यह आत्मा किसी का ग्रहण नहीं करता और किसी का त्याग नहीं करता, लेकिन ये अर्थ मूल में नहीं है। अन्यून अतिरिक्त ऐसे कहते हैं, अकृत्रिम चैतन्य जायक भगवान आत्मा है, प्रत्येक आत्मा अकृत्रिम है, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो बना बनाया। वीर्यत्व शक्ति उस आत्मा को बनाने वाली कारीगर है। मूर्तियों को बनाते हैं कारीगर, कारीगर मूर्तियों को बनाते हैं। तो यहाँ अनंत शक्तियों में वीर्यत्व शक्ति कारीगर का काम कर रही है, बराबर। कारीगर का काम कर रही है और बनाया किसको? कि आत्मा को जो बनाया वो कैसा बनाया? शून्य त्यागोपादान, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, उसकी चर्चा करेंगे। स्वामी जी सावधान करते हैं, और वो बात मुझे रात भर भटकती रही, इसलिए कहता हूँ कि चौरासी के अवतार माँ कोई दया करना रो न, पर्याय निकल जाएगी तो जो चौरासी का अवतार है, हैं? अंतिम वाक्य कल पाध्याय में पढ़ा रात्रि में, और फिर नहीं पूछ सके अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, निर्णय किए बिना जन्मा है, निर्णय करके जाए तो सफलता। चैतन्य जाए भगवान आत्मा का जीव ने निर्णय नहीं किया। स्वामी जी ने बुलाया नहीं कि मान लीजिए कोई निर्णय नहीं करता है तो, कि निर्णय नहीं करे तो स्वामी जी ने दिल लीजिए बच्चों का उदाहरण है, सात दिन तक बिल्ली के बच्चे को बिल्ली इधर उधर ले जाती है और जब उनकी आंखें खोलते हैं खुल जाती है तो ऐसा जगत, तो भैया तुमने निर्णय नहीं किया तब भी जगत तो ऐसा ही था, तो निर्णय करने में लाभ है। यही प्रश्न आता है, रजनी भाई का भी अभिप्राय है कि जो हम सीखते हैं उसका प्रयोग कैसे करें, तो प्रयोग के लिए सिर्फ इतनी सी ही बात है विचार करने की, सबको पुरुषार्थ अपना अपना करना है, प्रयोग अपना अपना करना है, लेकिन बात इतनी सी है कि राग विकल्पों के पार चैतन्य जागृत भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड सदाकाल विद्यमान है। बराबर, राग और विकल्पों से पार चैतन्य जाए भगवान आत्मा सदाकाल विराजमान, सदाकाल पड़ा है कहाँ, ये राग और विकल्पों से पार पड़ा हुआ है कि विकल्पों से विकल्प अतीत और राग से राग अतीत हो जाए तो वही चैतन्य जाए भगवान आत्मा दिखता है। तो किससे पार जाना है, केवल दो ही होते हैं, इसी समय समय का भी भेद कि इसी समय चैतन्य जाए भगवान आत्मा सभी के लिए उपलब्ध है, विराजमान है, दर्शन देने के लिए तैयार है, जाग तो जीव उगोर से प्रति समय से। बराबर है, तो विकल्पों में जो अटका हुआ है, विकल्पों में अटकता है, कभी ज्ञान के विकल्पों में अटका है और कभी आत्मा के विकल्पों में अटका पड़ा है। विद्वान हो है या अनपढ़ हो, सभी को चैतन्य जाए भगवान आत्मा दृष्टि में आ सकता है। तोड़ी ने तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान आत्मा की अनुभूति के लिए जानने के लिए तत्वों के नाम नहीं आते हो तो भी काम चल जाएगा, इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। जीव तत्व क्या है, जीव द्रव्य में क्या है, तो भैया तू जीव तत्व है, शुद्ध चैतन्य तत्व है, अनंत शक्तियों का पिंड है, इसका निर्णय कर, इसे गहराई नहीं जाना, दोनों किशोर भाई पास ही होते हैं। स्वामी जी ने जो 45 वर्ष तक समझाया है वो 45 सेकंड में निर्णय हो गया, सिर्फ दर्शन इतनी की है कि पर्याय विकार राग विकल्पों से पार मैं ध्रुव चैतन्य तत्व विकल्पों में रहते हुए भी विकल्पों से भिन्न हूँ, राग में रहते हुए भी राग से भिन्न हूँ, असिद्धता ने मेरे भीतर प्रवेश नहीं किया, इसीलिए इस समय मैं सिद्धता का अनुभव करूँ तो हो सकता है। स्वामी जी जीवन शक्ति में चार प्राणों की चर्चा करते हैं, ज्ञान प्राण, दर्शन प्राण, सुख प्राण और वीर्य प्राण। बाहर में 10 प्राणों से यह जीव जीता है, ये व्यवहार होता है। 10 प्राण कौन से, 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 10 प्राणों से यह जीव जीता है ऐसा व्यवहार कहता है, व्यवहार कहता है, लेकिन ये 10 प्राणों का विचार करके देखो कि 10 के 10 प्राण जड़ है, इनमें से 5 इंद्रियों जो प्राण है वो भाव प्राण भी लेते हैं, सूक्ष्म रूप लेते हैं, तो भी असिद्ध निश्चय नहीं है। बात समझ में आती है कि यह जीव सदाकाल जीता था जीता है और जिए जाओ चार प्राणों से, कि ज्ञान प्राण, दर्शन प्राण, सुख प्राण और वीर्य प्राण, इन चार प्राणों से ही अनादिकाल से जीवित था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इन चार प्राणों की चर्चा स्वामी जी ने जीवन के शक्ति में की है। और स्वामी जी कहते हैं आगे कि जीवन के शक्ति में दे देना जो शब्द है चैतन्य मात्र, क्या शब्द लिखा है, मात्र मात्र शब्द लिखा है। कि मात्र का अर्थ ये है, स्वामी जी कहते हैं कि मात्र शब्द लिख करके आचार्यों ने व्यवहार का, निमित्त का, द्रव्य प्राणों का अभाव कर दिया है। मात्र शब्द में कि मात्र का सिद्धांत है, ये मात्र का मतलब क्या है, ये त्रिकाल सिद्धांत है कि जीव अनादि काल से इन चार प्राणों से ही जीता था, आज भी चार प्राणों से जीता है और भविष्य में भी चार प्राणों से ही जीता रहेगा। अर्थात और एक बात और है, स्वामी जी ने ये कहा कि जीवन के शक्ति कौन सा भाव है, मुझे भी कई विकल्प, दो चार विकल्प आगे पंडित सब। एक तो शक्तियाँ कौन से नैका विषय, नैका है या प्रमाण का, ये चर्चा नहीं करेगा अपन, कौन से भाव रूप है और द्रव्य रूप है, गुण रूप है या पर्याय रूप है, अनेकांश स्वरूप है या चाकवाद रूप है, ये चर्चा कभी बीच में प्रसंग आएगा तो विचार करेंगे। यहाँ तो स्वामी जी कहते मात्र कह करके, मात्र शब्द है ना भाई, मात्र है कि मात्र कहकर के निकाल दिया, किसको निकाल दिया था, कि मात्र के अलावा बाकी सब कौन था। मात्र से पहले क्या है, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र है ना, कि इस जीवन के शक्ति में चैतन्य मात्र शब्द आया और किसी शक्ति में भी यही बात आएगी, दोनों में अंतर क्या है उसकी चर्चा करेगी। बराबर, स्थिति शक्ति में और जीवन के शक्ति में क्या अंतर रहा, सामान्य बात अभी बता दे, इसे चर्चा और करेंगे। कि सामान्य बात यह है कि जीवन के शक्ति को स्वामी जी ने पारिणामिक भाव बताया, कौन सा भाव बताया दिया, पारिणामिक, कैसे उसकी चर्चा करेंगे। स्थिति शक्ति भी पारिणामिक भाव है, ध्यान से सुनो, ध्यान से धीरे धीरे चलता रहे, लेकिन इतनी गहराई हम लोगों में तो है नहीं और अपने किसी में भी हो नहीं सकती, उतना समर्पण उतनी रुचि जो स्वामी जी ने की, जितनी पवित्रता वो आप लोगों में है, लेकिन उन्होंने जो बताया उस पर विचार करना है। क्योंकि अब एक तरफ से स्वामी जी कह रहे हैं कि जब जीवन के शक्ति के ज्ञान के द्वारा, ध्यान से सुनना ये बात, जीवन के शक्ति के ज्ञान के द्वारा जब शक्ति को चैतन्य जाए भगवान आत्मा पर दृष्टि जाती है, तो जीवन के शक्ति के तीन भेद हो जाते हैं। नहीं, जब त्रिकालीन चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा पर जीव की दृष्टि जाती है, चैतन्य जाए भगवान आत्मा विकल्पों से रास्ते पार जाने पर, ज्ञान जब विकल्पों से पार जाता है, ज्ञान जब राग से पार हो जाता है, ज्ञान जब पर्याय का विचार नहीं करता, ज्ञान जब गुण भेद का विचार नहीं करता, तब वो ज्ञान अतिंद्रिय होकर के चैतन्य जाए भगवान आत्मा को पकड़ता है। कौन पकड़ता है, ज्ञान ही जीव को जानता है, ज्ञान के द्वारा ही जीव को जाना जाता है, लेकिन जब तक ज्ञान संकल्प रहता है, अटका हुआ रहता है, तब तक ज्ञान जीव को नहीं जानता। बराबर है, जानी समझ में आती है बात, है सभी को समझ में आता है, अपनी बात है अपने लिए। ज्ञान ही जीव को जानता है,
ज्ञान के द्वारा ही जीव जानने में आता है, लेकिन तब ये प्रश्न होता है सभी के दिमाग में रहती है कि बहुत समय हो गया सुनते सुनते है, और अब शरीर को ये लगता है कि शरीर की अवस्था हो ऐसी हो चली है कि किसी भी समय शरीर अलग आत्मा अलग ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने से पहले ऐसा हो जाए कि जो ज्ञान सूक्ष्म रूप है, इंद्रिय ज्ञान है, स्वामी के प्रवचन में भी आ चुका कि ये ज्ञान अतिंद्रिय हो जाए और चैतन्य जाए, भगवान आत्मा को ग्रहण करे, देखे अन्य वस्तुओं को देखते देखते अनंत काल बीत गया, अनादि काल से पर को देखते देखते इस समय तक, आज तक और इस समय तक यह जीव ज्ञान के द्वारा पर को ही देख रहा है। अब इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को कैसे देखे, क्योंकि देखने वाला तो ज्ञान ही है, जानने वाला ज्ञान ही है। स्वामी जी भी उदाहरण देते हैं जापानी के द्वारा, एक जापानी व्यक्ति था, जैन दर्शन लिया है, अनुभूति ही जैन दर्शन है और कोई जैन दर्शन नहीं है। ये पुस्तक कॉपी स्वामी जी ने शक्तियों के प्रसंग में याद भी किया था कि शक्तियाँ तो अंदर में पड़ी है, शक्तियाँ भीतर पड़ी है, प्रवचन वगैरह नहीं पड़ी है, और जो कैसेट वगैरह उसमें भी नहीं पड़ी, शक्ति तो हमारे भीतर पड़ी है, हम शक्ति के मूल्य है, लेकिन मान रखना है जल सभी द्रव्यों में शक्तियाँ है। स्वामी के शक्तियों के प्रवचन में पहले प्रवचन में बात कि कोई भी द्रव्य शक्तियों से रीता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य में अनंतानंद शक्तियाँ बनी पड़ी है, इसलिए करता मैं कुछ करूँ, देखे का कुछ करूँ, बाहरी का कुछ करूँ, ये मान्यता ही झूठी है। तू कर नहीं सकता और तुझे करने की आवश्यकता नहीं, कर नहीं सकता क्योंकि अत्यंता भाव है, करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें अनंत गुण पड़े हैं। जैसे तुझे अनंतानंद गुण है, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने अनंतानंद गुण बड़े भरे पड़े हैं, उन गुणों के कारण से प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है कि मैं भी अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, मुझमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोनों शक्ति में यह बात आई, कौन सी शक्ति में, सोलहवीं शक्ति में ये बात आई है, उसके बाद फिर पहली शक्ति की तरफ आएंगे। सोलहवीं शक्ति दिखाना इस बात कि अन्योन अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा चारो पाराम चिन्हित, ठीक है, बराबर है ना। एक एक शब्द पर भाई ध्यान से गौर करना, इसमें प्रत्येक वस्तु का स्वरूप बताया, जीव की शक्तियाँ बताइए, ये जो शक्तियाँ ना ये जीव की बताई सभी पर लागू करना। विश्व का प्रत्येक द्रव्य अपने आप में व्यवस्थित है, तुझे किसी की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व का प्रत्येक परमाणु अपने आप में व्यवस्थित है, तुझे वहाँ व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। संस्थाओं में व्यवस्थापक होते हैं, लेकिन वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थापक नाम का कोई पद नहीं है क्या? अन्य अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागो पालन चिन्हित स्वरूप, ये बहुत गजब की शक्ति है। और इसकी जो और भी शक्तियाँ हैं गजब की है, एक थी पहली बार ये शक्ति प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक जीव में है। जैसे ये सामान्य शक्तियाँ बताई पड़ी है, इसको प्रत्येक जीव में लागू करे तो कैसे करे, जैसे पहली शक्ति आत्म द्रव्य हेतु, आत्म द्रव्य हेतु चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण जीवन के सत्य तो सामान्य है, अब प्रत्येक जीव पर कैसे लागू करें, संस्कृति में कैसे लागू करें, कि प्रत्येक आत्म द्रव्य हेतु, क्या लिखना, समझना क्या है, लिखना नहीं गाला जी, प्रत्येक आत्म द्रव्य हेतु भूत, प्रत्येक आत्मा में प्रत्येक आत्मा की हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव प्राण से धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य में किसी की फिक्र करने की आवश्यकता है, परिणाम कराने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप परिणमित है, परिणाम कराने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। बराबर है, कितना बोझा लिए हुए रहता है, सोगानंद जी की भाषा में करना सुमरना है। और इसे ये जो सोल शक्ति है, इस शक्ति में जो ये चारों पादान इंद्रिय शक्ति है, इस शक्ति में से ये अर्थ ग्रहण करना है कि अपनी पर्याय को भी बदलने की आवश्यकता नहीं। क्या चिंता है, अपनी पर्याय को भी बदलने की, परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। फिर प्रश्न ये होगा, यह छात्र से सम्यक दर्शन में आना है कि नहीं आना है, बात सुनने वाले कि निष्ठात्व का नाश करना है कि नहीं करना है, कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, ये परिपूर्ण के स्वीकार में जो कुछ होता है वही करना था, वो हो चुका है साल में, उसमें भी विभूत करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही बात, कि ऐसा स्वीकार करने पर जो कुछ होता है वही करना था, तो जिस समय तुझे करना था तब तो तू स्वरूप में था, इसलिए जो करना था वो भी सहज में है। कि चारों पादान सिंह शक्ति में शब्द विज्ञान ज्ञान के प्रारंभ में अन्यू में कौन से शब्द है, शब्द अलौकिक है, दिव्य का सार भरा हुआ है, स्वामी को जगह बार शांत भरा हुआ के अवतार में कोई शरण नहीं है, जिसके द्वारा अशरण स्वरूप भगवान आत्मा को देखा जाता है, वो प्रसंग वो अवसर अब हमारे सामने है, इसको व्यर्थ मत बोलो, कोई सहायता नहीं है। चौरासी के अवतार में रखता है, नरक में जाएगा, निगोड में जाएगा, स्वामी जी को कहते इस काल में जाकर कर भी तिरिक्त गति में जाएगा, मायाचारी के सदा काल परिणाम अक्सर रहते हैं, तिरिक्त में जाएंगे, लेकिन जाएंगे पक्का नहीं है, हम पुरुषार्थ करें तो टाल सकते हैं, है? लेकिन पुरुषार्थ की दरकार है, यहाँ कहते हैं कि तुम तो आप कृत्रिम चैतन्य जाए भगवान आत्मा हो, क्यों कि तुम्हारे में अनादि काल से कोई न्यूनता नहीं, चल जाए अन्यून चैतन्य स्वरूप में अनादि काल से कोई कमी नहीं, मेरे बात नहीं, अन्यून शब्द है। और अगला शब्द है अतिरिक्त, न तो कोई कमी थी न कोई ज्यादा थी, मेरे बात नहीं, जैसे पेड़ वगैरह बढ़ जाते हैं तो कटाई कटाई करते नहीं मान लो, या कोई और चीज बढ़ जाए तो काटते हैं उसको, तो उसको व्यवस्थित करते हैं, तो चैतन्य जाए भगवान आत्मा में क्या करना है, हा? अरे प्रभु प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप व्यवस्थित है, तू भी अपने आप में व्यवस्थित है, परिपूर्ण है, तुझमें न कोई कमी है न कुछ अधिकता है, जैसे नाखून बढ़ जाए बाल बढ़ जाए तो काटने पड़ते हैं, ये शरीर का एक उदाहरण है, लौकिकता की बात है, तेरे में अंश मात्र ही, अंश तो क्या कहे, जो पर्याय में अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं वो अविभागी प्रतिच्छेद भी न कभी कम से न कभी ज्यादा। अकृत्रिम बना बनाया भगवान आत्मा अकृत्रिम है। अकृत्रिम शौचालय पांच प्रकार के होते हैं, सुना ही होगा, अकृत्रिम शौचालय पांच प्रकार के होते हैं। उत्तम होते हैं, मध्यम होते हैं, जघन्य होते हैं, लघु होते हैं और उत्कृष्ट होते हैं। कितने प्रकार के हैं? पांच प्रकार। और मैं अकृत्रिम चैतन्य भगवान आत्मा अकृत्रिम बना बनाया देव हूँ। इस पर देव कहते हैं तो विरोधी लोगों को महिमा आने की बजाय निंदा का भाव होगा। अरे उनका तो भगवान आत्मा है, उनको खबर नहीं। स्वामी जी भी कहते हैं कि हम 45 बरस तक उस मत में पड़े हैं, वहाँ भी इस बात की खबर नहीं। उन लोगों को तो ये बात सुनने को भी नहीं मिलती, नहीं बात सुनी। क्यों? कि वहाँ ये बात है नहीं तो मिले कहाँ से। ऐसे ही स्वामी जी सुख शक्ति के बारे में कहते हैं कि जैसे जो चीज खाई जाती है उसी की डकार आती है, नहीं आती। जो चीज खाई जाती है उसी की डकार आती है। ऐसे ही सुख शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा पर दृष्टि पड़ते ही पर्याय में जहाँ दृष्टि गई थी वहाँ जो था वो पर्याय आ गया, नहीं आती। पर में दृष्टि जाएगी तो पर में क्या है? राग और विकल्प है। पर में राग है, विकल्प है। वहाँ दृष्टि गई तो वहाँ जो था वो आ गया, वहाँ जो था वो आ गया। ये भी उपचार का कथन है। वहाँ जाने से जो होना था वो हो गया, नहीं होगा। पर में दृष्टि जाने से राग होना था, विकार होना था, दुख होना था, वो हो गया। ऐसे ही स्वामी दृष्टि जाने पर अतीन्द्रिय सुख होना था, अतीन्द्रिय आनंद होना था, राग का अभाव होना था, विकल्प का अभाव होना था, वो गया। सारा मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग जीव के खुद के अधीन है, किसी के अधीन नहीं है। खुद क्या करें? कि शक्तियों को जानने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। शक्ति का अवेद पिंड स्वामी जी कहते हैं, ये अवेद और पिंड ये भी उपचार है। अवेद कहना और पिंड कहना वो भी विशेषण होने से उपचार है, क्योंकि अनुभूति विशेषण रहित अतिंद्रिय स्वरूप होती बात पकड़ने वाली। ये भी विकल्प है, ये भी क्या है? विकल्प। अवेद हूँ ये भी विकल्प है, ज्ञायक हूँ ये भी विकल्प है। इसलिए छठी गाथा के चौथे चरण में ये कहा कि जो है तो है, वहाँ विकल्प का भी अभाव किया, क्योंकि स्वरूप में विकल्प नहीं और स्वरूप के अनुभव में भी विकल्प नहीं है। इसलिए अवेद कहो, अखंड कहो, जो द्रव्य के विशेषण है वो भी विकल्प है। क्या कहते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं, अन्योन्य मुझ में कोई कमी नहीं, न कोई अतिरिक्त है कि जिसका मुझे अभाव करना। इसका मतलब क्या है कि जैसा है वैसा ही स्वभाव वर्तमान में रहते हैं, नहीं बात। कुछ भाव का अभाव करना, कुछ भाव को लाना, ऐसा मेरे स्वरूप में नहीं है। अर्थात जो त्रिकाल भाव है, त्रिकाल स्वभाव है, वो वर्तमान में विद्यमान है। इसलिए शक्ति अपेक्षा प्रत्येक शक्ति प्रति समय प्रत्येक पर्याय में विद्यमान है। कि प्रगति क्यों नहीं होती है, कि प्रगति नहीं होने के लिए वस्तु स्वरूप जिम्मेदार नहीं है, तू स्वयं जिम्मेदार है। कि द्रव्य अपेक्षा तेरे में कोई कमी नहीं, गुण अपेक्षा भी तेरे में कोई कमी नहीं, और पर्याय अपेक्षा भी तेरे में कोई कमी नहीं है। तो पर्याय अपेक्षा तो कमी है ना प्रभु, राजा जी का भाव है, निख्यात्व है, ये है कि नहीं? कि जब द्रव्य अपेक्षा मुझे कोई कमी नहीं, गुण अपेक्षा मुझे कोई कमी नहीं, इन दो बातों का निर्णय हो जाता है। जैसे तीन लड़के खड़े थे, मास्टर ने दो लड़कों को जोर से थप्पड़ मारे तो तीसरा भागे, समझ गया वो वे दो को जोर से थप्पड़ लग गए। जब तक ये निर्णय हो जाता है कि द्रव्य अपेक्षा परिपूर्ण हो, गुणों की अपेक्षा परिपूर्ण हो, तो पर्याय में अपूर्णता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ ये स्वर ही पर्याय का है। क्योंकि द्रव्य में जब परिपूर्णता स्वीकार की गई, गुणों की अवैध अखंडता स्वीकार की गई, तो स्वीकार करने वाली पर्याय जब ये कह रही है कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो उसमें भी अपूर्णता रह गई है। दर्शन में आ गया कि द्रव्य अपेक्षा परिपूर्ण हूँ, गुण अपेक्षा परिपूर्ण हूँ, ये कौन कौन कहवा पर्याय कहती है। जब ये पर्याय अपने आप को परिपूर्ण कहती है, समझ लेना उसी क्षण मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। और जब तक ये पर्याय अपूर्णता से जीत जाती है, अपूर्णता के नगाड़े बजाती है, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं संसार मार्ग रहता है। सारी दुनिया तो विषय भोगों में पड़ी है, थोड़े से समय के लिए चल बाहर गए थे, वही निकल पाए कि बाहर की दुनिया तो उसे भोगों में पड़ी, किसी को कान किसी को भी सुनने को नहीं मिल रहा है, किशोर भाई अफ्रीका से आए इसी बात के लिए आदमी के लिए, और सुबह बहुत अच्छा बात थी, उन्होंने कहा कि बाकी दिन को वही काम करना है, इस काम के लिए आए, ये भी इतना पुण्य लेकर के आए, प्रत्येक अपना अपना पुण्य पाप लेकर के बैठा हुआ है। ये लौकिक संयोग की बात है, पुण्य पाप धर्म मार्ग में नहीं, इसलिए पुण्य पाप की चर्चा भी धर्म मार्ग में नहीं है। यहाँ तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य वस्तु की चर्चा है, द्रव्य अपेक्षा शुद्ध, गुण अपेक्षा शुद्ध, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय न वो क्या कहती है कि न मैं अन्य मतलब कम नहीं हूँ, अन्य कुछ कम नहीं है। रत्नजन सावकाचार्य ने सम्यक दर्शन की परिभाषा में निसंकित गुण से हम लोग नहीं पाते, अन्य मन अतिरिक्तम यथा सक्षम विना किसी तरीका, निसंकित सम्यक ज्ञान की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की परिभाषा में ये बात है कि अन्योन्य मन अतिरिक्तम, स्वामी जी के प्रवचन में भी आगे बात है कि जैसा है वैसा है, ध्यान दिया था कि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है, त्रिकाल स्वरूप एक जैसा है, जिस काल में स्वीकार करेगा वो काल तेरे लिए रत्नत्रय का काल होगा, जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक वस्तु का स्वरूप वैसा ही रहेगा, लेकिन तेरे लिए संसार मार्ग रहेगा। अन्योन्य अनतिरिक्तम, यहाँ भी बोल सकते न न्यून है न अतिरिक्त स्वरूप है, तो कैसा है नियतत्व रूप, नियतत्व रूप कौन सा रूप है, नियतत्व रूप। नियतत्व रूप का मतलब ये है कि अनादि काल से जैसा रूप था आज भी उस रूप को वैसा रखना, अनंत काल तक वैसा ही बनाए रखना, ये चारों पागान चिन्हित शक्ति का कार्य है। बराबर, ये शक्ति अनाद काल से कर रही है। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि कर्म जो जड़ कर्म है ना, जड़ कर्म बहुत अच्छे है उदाहरण कि वो कभी अपना समय नहीं टूटते। टूटते हम तो लेट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, प्रमाद करते हैं, वो प्रमाद भी नहीं करता, वो दया भी नहीं करता। बालक है या बड़ा है या क्या है, कुछ समय पहले बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं, ये समय नहीं है यहाँ उदाहरणों का, प्रतिमा होता है। महावीर स्वामी के जीव का कथानक है तो उसके भाई महावीर स्वामी के जो भाई हैं, कुछ समय पहले राजा थे, दूसरे राजा ने आक्रमण करा दिया, हरा दिया, भीख मांगने लगे, भीख मांग करके पेट भरते हैं, कर्म में नहीं सोचता, दया नहीं करता। कुछ समय पहले राजा था, इसको तो छोड़ सकता नहीं करता, मतलब कर्म की रोक नहीं है, हम अपने विचारों की रोक कर सकते, कर्म की रोक नहीं है। जैसी परिस्थिति है, जो द्रव्य कर्म है उसका नाम कर्म के साथ, नो कर्म के साथ निमित्त निमित्त संबंध है, लेकिन भाव कर्म के साथ वो संबंध नहीं है। पकड़ना भी बात, द्रव्य कर्म का नो कर्मों के साथ निमित्त निमित्त संबंध है, भाव कर्मों के साथ नहीं। इसलिए द्रव्य कर्म के उदय के काल में और बाहर में नो कर्म के संयोग में भी यह जीव अंतर्मुखी पुरुषार्थ करे तो परिणामों की स्थिति कर सकता है। उसके लिए कर्म का उदय या बाहर की परिस्थितियां बाधक नहीं। ये करने के बाद मैं ये करूँगा, ये करने के बाद मैं ये करूँगा, ये पुरुषार्थ की भाषा नहीं है, ये प्रमादी की भाषा है। क्योंकि कर्म का उदय बाहर की परिस्थितियाँ जीव के परिणामों को रोकने वाले नहीं होते हैं। कर्म की आड़ मत लेना, परिस्थितियों की आड़ मत लेना, क्योंकि तू स्वयं ही अपने प्रमाद के कारण से धर्म मार्ग से दूर रहता है, आरोप कर्मों पर लगाता है, ये तुझे जैनी होकर शोभा नहीं देता। स्वामी जी सितम्बर मत्ती बात याद करके कहते हैं कि वहाँ 48 वर्ष तक के लिए कोई बात थी नहीं, और यहाँ भी 47 वर्ष हो गए ऐसी बातें थी, और वो कहते हैं कि वहाँ निमित्त से ही होता है यही बात है, और यहाँ भी यदि कोई निमित्त से ही होता है ये मानता है तो यहाँ भी वही रही, मती तो एक जैसी रही, शब्द बदल गए, शब्द बदल गए, मती तो वही रही ना, बोलो बुद्धि तो वही रही, परिणाम वही रहा, निश्चा तो वैसा का वैसा ही रहा, इतना सा अंतर हो गया, कल तक नहीं जानते थे आज जानने लग गए। मिथ्या को बदला क्या, असली बात तो यह है कि बाकी हम कितना भी करें सबसे आगे शून्य जोड़ लेना, क्योंकि ये कार्य रायचंद्र की भाषा में भी कहे कि अनंत बार हो चुका है। बालकी कार्य पंक्ति है ना कि ये क्रिया आपका ये किया, सारी क्रियाएं कर ली, और हे मन अब भी क्या उन कार्यों से तुझे संतुष्टि नहीं हुई है, क्या रह गया बाकी, ये प्रश्न है। ये किया कोई नहीं किया, पैसे आ जाए तो समझ लेना इससे भी कई गुना धन अनंत बार आ चुका है, वर्तमान का पुण्य विचार कर लेना ऐसा तो अनंत बार हो चुका है। ज्ञान शक्तियों के प्रवर्तन में स्वामी जी कहते हैं कि वैसे तो 11 अंग का ज्ञान भी अनंत बार प्राप्त करिए, ज्ञान से भी क्या निकला, निकले जाओ अतीन्द्रिय ज्ञान से, और अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो पिछली बार कुछ नहीं कर लो, समझ में आता है जरूर, या नींद आती है नहीं आनी चाहिए, आज भी लग रहा है नींद आ रही है, अपनी योग्यता है, अपनी अपनी योग्यता से संयोग मिले हैं,
संयोग में अच्छाई है न बुराई है, तेरी सोच में अच्छाई बुराई है। किसी के कम संयोग देख करके अपने आप को अधिक मानता है और किसी के अधिक संयोग देख करके अपने आप को कम मानता है, इसका मतलब तुझे अभी चारों पादान सिन्नत शक्ति का ज्ञान नहीं है। किसी को देख करके कम मानना, किसी को देख कर अधिक मानना, इसका मतलब अभी हमने चारों पादान सिन्नत शक्ति को समझाई नहीं, समझाई नहीं अभी। अरे प्रभु, एक एक शक्ति निर्वार करने वाली, एक एक शक्ति का स्वरूप निर्वार करने वाला है कि चारो पादान सिन्नत शक्ति कि ज्ञान एक सूक्ष्म ज्ञान है, इसका कोई भरोसा नहीं है और लाभकारी नहीं है। अतिमूल्य ज्ञान का भरोसा है क्योंकि वस्तु का निर्णय करता है, सुख के द्वार खोलता है, इसलिए अतिमूल्य ज्ञान ये प्रयोजन नहीं है। समझ आया कि अन्योन्य मन के उत्तम कि न मुझमें कोई कमी है न मुझमें कोई अधिकार, ये तो बाहर के संयोग है। संयोगों से कोई जीव बड़ा नहीं हुआ, संयोगों से कोई जीव छोटा नहीं हुआ। प्रत्येक जीव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा देखा जाए कि प्रत्येक द्रव्य में शक्तियाँ कैसी है, चतुष्टय युक्त है। बहुत सारे विचार है, समझ में चर्चा की है, अब कितना समय मिलेगा और कितना हो पाएगा ये अलग बात है। मैं तो अनादि अनंत जीव तत्व है, आप भी अनादि अनंत हो, मैं भी अनादि अनंत हूँ और ये देवलाल भी अनादि अनंत है। फिर कभी चर्चा करेंगे यहाँ पर क्या है कि शक्तियों में चतुष्टय है, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल भी है और भाव। ऐसा कौन सा काल था जब शक्ति नहीं बाह्य काल थे, बराबर रमेश भाई? ऐसा कौन सा काल था जब शक्ति नहीं थी? शक्तियाँ सर्वकाल में होती है। दूसरा, शक्तियाँ शक्ति अपेक्षा से काल का अर्थ पर्याय करते हैं तो प्रत्येक पर्याय नहीं है। और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जीव का, स्वक्षेत्र लेना है, बात नहीं वाली, क्या लेना है, स्वक्षेत्र, कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा प्रदेश है कि जहाँ शक्तियाँ नहीं होती है। प्रत्येक क्षेत्र में आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंतानंत शक्तियाँ अनादिकाल से थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। तो मान न मान इससे शक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुझे तो पड़ रहा है लेकिन शक्तियों को नहीं पड़ रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में स्वक्षेत्र लेना, जो प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति है, पहली बात प्रत्येक क्षेत्र में शक्तियाँ अनंतानंद है, दूसरी बात प्रत्येक क्षेत्र में शक्तियाँ अनादि से है, ये तीसरी बात शक्ति है, अनंत है, अनादि से है। प्रत्येक क्षेत्र में ये आत्मा के प्रत्येक क्षेत्र में असंख्य असंख्य प्रदेशों से भी प्रत्येक क्षेत्र। चर्चा संग्रह ग्रंथ के अंत में मुनिराज का स्वरूप बड़ा अलौकिक तरीके से सुंदर, मुझे अच्छा लगा कि मुनिराज ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं, बाहर उनको ठूंठ जान करके पशु खुदा कर चले जाते हैं, उनको अंदर में पता नहीं। दूसरी बात, जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो पूर्व की दशाओं पर खेद और वर्तमान में आनंद के अश्रु उनसे निकलते। ओहो, मैं तो अनादि काल से इस चैतन्य स्वरूप को भूला हुआ था। किसको? अज्ञानियों को तो खबर नहीं है, ज्ञानियों को खबर है, बेखबर सब लोग आया था।
स्वामी जी के प्रवचन में व्याख्या में दो खबर शब्द है कि अनादि काल से दो खबर पड़ा है जिनको चैतन्य तत्व की खबर है उनकी चर्चा है कि जिनको खबर पड़ी जो अपने स्वरूप में लीन हो गए तो उसके भोग में इतना आनंद होता है कि जैसे लौकिक में ज्यादा खुशी हो जाए तो आंखों से आंसू आते हैं वैसे मुद्राजों के आंखों से आंसू निकलते हैं। और दो मुद्राएं बताए ध्यान के काल में दो मुद्राएं होती है एक तो विस्मय कारी मुद्रा होती है और एक होती है विकराग मुद्रा। कौन सी मुद्राएं बताई उसमें चर्चा संग्रह दो हास्य नहीं हास्य तो कथा है। स्वामी जी ने उदाहरण दिया जयपुर का कि जयपुर में लोग मुर्गियों के लिए जाते हैं कहते हैं कि हमको हंसने वाले हंसों की मुद्रा दो बोले उनको खबर ही न थी है? नहीं भाई खबर ही न थी हास्य कषाय है मुद्रा वीतरागी प्रभु की मुद्रा भी वीतरागी होनी चाहिए हास्य तो कषाय है वीतरागी मुद्रा ही वीतरागता में निमित्त होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा वीतरागी होनी चाहिए है? और वहाँ मुनिराजों की दो मुद्राएं बताई एक तो विस्मयकारी मुद्रा और एक वीतरागी मुद्रा। विस्मयकारी मुद्रा संकल्प दशा की है वीतरागी मुद्रा निर्विकल्प दशा की है जब निर्विकल्प दशा में रहते हैं तो वीतरागी मुद्रा ही होती है और वीतरागता से अंदर में ही संकल्प हो जाते हैं तो उनको विस्मय होता है अरे मैं तो अपने चैतन्य भगवान आत्मा को अनादि काल से भूला हुआ था ये बाकी संसार के पद मेरे पद नहीं थे एक ही ज्ञान पद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मतलब रहने योग्य है टिकने योग्य है यही मुझे रहना चाहिए था इसको भूल करके ये सभी कल्प दिशा में इशारा है तो ऐसे ही विचार साधक जीव को पात्रता की दिशा में आते हैं और ऐसे विचार नहीं आते हैं तो अभी पात्रता भी नहीं है ऐसा सुनने से काम नहीं करेगा बात नहीं मानी सुन लिया उत्तर के चले गए कुछ प्रयोग किया नहीं कभी भूखा भी नहीं अंतरंग दृष्टि का प्रयत्न भी नहीं किया अरे मैं तो अनादि काल से अपने स्वरूप से दूर हूँ अब कैसे करूँ कि अपने स्वरूप के पास जाऊँ अपने स्वरूप को प्राप्त करूँ ये विकल्प चलते हैं तो पात्रता है और नहीं चलते हैं और ज्ञान बढ़ाकर चले जाते हैं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मनुष्य बढ़िया चली जाएगी तो कितना भी दान दिया हो सुबह से शाम तक प्रवचन भी दिया या पूजन भी की ये सब कुछ नहीं ये सब क्या है दादा जी शून्य है कुछ दम नहीं होगी छे घंटे पूजन छे घंटे स्वाध्याय कोई नहीं रहेंगे रिजल्ट आना चाहिए मेहनत कितनी थी ये कोई मतलब नहीं कि आपका करना रिजल्ट क्या है ये होना चाहिए अब रिजल्ट नहीं है बेचारी मेहनत करते जा रहे हैं मेरी बात नहीं अरे दिन भर स्वाध्याय किया लेकिन उस स्वाध्याय में से चैतन्य आत्मा नहीं निकला निज जाय भगवान आत्मा पर दृष्टि नहीं गई उस स्वाध्याय में से चैतन्य जाय भगवान आत्मा आविर्भूत नहीं हुआ सर्वोत्तम ज्ञान के चक्कर में ये जाय भगवान आत्मा तिरोभूत रहा तो ऐसे सर्वोत्तम ज्ञान का क्या फायदा द्वार चांद का ज्ञान हो लेकिन उस द्वार चांद के ज्ञान में तीन लोग की रचना ऐसी थी अकृत्रिम निरंब ऐसे थे ये ख्याल नहीं ये अप्रयोजन भूत नहीं है लेकिन इस सूक्ष्म ज्ञान के चक्कर में ये अपना दिवाली चैतन्य स्वरूप तिरोभूत हो जाए और सोक्षम ज्ञान ही आविर्भूत रहे और आप भी यही गलती कर रहे सुनते समय आप भी सोक्षम ज्ञान ही आविर्भूत है सुनने का अभाव ही आविर्भूत है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इस काल में भी तिरोभूत है तो ये सुनना भी बात समझना चैतन्य गायक भगवान आत्मा अकृत्रिम दिन बिंब है, जैसे पांच दिन बिंब हमने चर्चा सुनी है, उत्कृष्ट, मध्यम, गगन्य, लघु और अवशेषणी, सौ योजन, पचास योजन, पच्चीस योजन, एक कोश और सर्वों के द्वारा प्रमाणित ऐसे इनके नाप है। ये चर्चा यहाँ का विषय नहीं है। यहाँ का विषय तो दो शक्तियाँ हैं। एक तो शक्ति ये कहती है कि हे जीव, तुझमे अनादिकाल से सुख शक्ति का भंडार भरा है। इसलिए तुझे सिद्धांत याद रखना, बाहर सुख नहीं, भीतर दुख नहीं। सिद्धांत है, बाहर सुख नहीं है, बाहर में शोषण ज्ञान भी आ गया, विकल्प भी आ गया, राग भी आ गया, निमित्त भी आ गया, बाहर सुख नहीं है। द्वादशांग का ज्ञान हो, उस ज्ञान के आश्रय से भी सुख नहीं होता। संवर अधिकार में आचार्य भगवान भी कहते हैं और स्वामी जी भी कहते हैं कि निर्मल पर्याय के आश्रय से भी निर्मल पर्याय प्रगत नहीं होती। इसलिए उपयोग में उपयोग, उसमें से एक उपयोग का मतलब निर्मल पर्याय और निर्मल दूसरे उपयोग का मतलब त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा है, दोनों पर्याय है। ऐसा नहीं क्योंकि निर्मल पर्याय के आश्रय से ही निर्मल पर्याय प्रगत नहीं होती है। शुद्ध पर्याय तो सदाकाल त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही प्रगत होती है। जब भी प्रगत होगी वो त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा के आश्रय से ही प्रगत होगी। इसलिए उसको सदाकाल आश्रय त्रिकाली का रहता है और उसमें सारी मुद्रा मुनिराजों की क्यों होती है कि मुझे चैतन्य गायक भगवान आत्मा दिखाई दिया, मैं कितना सौभाग्यशाली। अरे वो अनंत गुणों का पिंड, अनंत शक्तियों का पिंड। अरे स्वामी जी ने भी बताया आकाश गर्भवती व्याख्या में, क्या बताया, आकाश 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 लास्ट में उसकी बॉन्ड्री वॉल तो होगी कि नहीं, किशोर है क्या इतनी बात तो पकड़ लिए किशोर भाई ने कि कोई बॉन्ड्री वॉल बनी हुई होगी। मकान लेके तो बॉन्ड्री वॉल बनवाते ना सरकार है, जज की भी बात आई कोर्ट जज है, यहाँ सर्वोच्च परमात्मा का न्याय चलता है। रात्रि में जो पाप ऐसा रहता है उसमें भी नी धातु से स्वामी जी को भी संस्कृत का ज्ञान था, मुझे भी है नी धातु से न्याय शब्द बना है स्वामी जी कहते हैं। यहाँ जो न्याय है ये सर्वोच्च परमात्मा का न्याय है, इस न्याय में फेर नहीं होता। तू अपने बुद्धि से न्याय मत कर, तुझे न्याय बना बनाया मिला हुआ है, उस न्याय में अपने आप को स्थापित कर तो तेरा रिजल्ट अच्छा होगा, वरना क्या होगा, ये पर्याय है नष्ट हो जाएगी। दोबारा संयोग मिले नहीं मिले स्वामी जी को उदाहरण देते हैं, कौन सा जैसे गर्मी के दिनों में चलता ना बवंडर बबू का, क्या कहते हैं गर्मी के दिनों में गोल गोल चलता है, सब समझ गए, उसमें सूखा पत्ता वो गोल गोल घूमता है, कहाँ जाकर गिरेगा कोई पता नहीं है। अरे प्रभु तू कहाँ जाएगा, आंख बंद होते ही मर जाएगा, ये संयम नहीं छूट जाएंगे। ये जिनके कारण से राग द्वेष करता है और राग द्वेष के कारण से जो कर्म बने वो कर्म शरीर बन करके वीर गति में रहेंगे, भविष्य में वैसे ही परिस्थितियाँ बनाएंगे। समय रहते जागना चाहिए, समय रहते शरीर का निर्णय करना चाहिए। इसके बिना बाकी जो कुछ भी करते हैं उसमें मोक्ष मार्ग नहीं, उसमें समाधान नहीं, और ऐसे ज्ञान में समाधान कारक बना भी नहीं है। समय हो गया है, हो गया, सही है।